نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک اور موقع ہم سب کے لیے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا، سیکھنے کا، اپنی دعاؤں میں رنگ ڈالنے کا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کریں گے حسن المسلم کا. آج ڈے 3 ہے اور آج ہم گھر سے نکلنے کی دعاؤں سے شروع کریں گے. ہم نے دیکھا کہ شروع سے رات کے اذکار شروع ہوئے. ایک ایمان والا رات ہی کو اس چیز کی تیاری کر کے سوتا ہے کہ میں نے کب سونا ہے، کیسے سونا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا باتیں کرنی ہے، اور پھر رات کی کروٹوں میں بھی رب کو یاد کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناتے ہوئے جب صبح میں اٹھتا ہے تو اپنے ناک کو جھاڑتا ہے. پھر سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میں دین اور دنیا دونوں کا علم بھی لوں گا، دنیا کے کام بھی کروں گا، دین کے بھی کروں گا، اور سب چیزوں کے بعد دو چیزیں مجھے سمجھ آ جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنات بنائی تو نے ہے، تو تعلق تجھ سے جوڑنا ہے. بسم ربی کا. ہر کائنات کی چیز، سورج، چاند، ستارے، گردش ایام دیکھتے ہوئے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. اور دوسری چیز، اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مجھے اس سے بچنا ہے. اب آج یہاں ہم گھر سے نکلتے ہوئے کی دعائیں، اور آپ کئی کتابوں میں اس کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے کی دعاؤں کے ساتھ بھی دیکھیں گے، کیونکہ ایک ایمان والا گھر سے صبح جب نکلتا ہے تو وہ مسجد کی طرف ہی جاتا ہے. آئیے آج کا ٹارگٹ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ایک ایک دعا جو ہم پڑھیں، سنیں، ادھر سیکھیں، اس پہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں، ایک سے زائد دعا ہے. پہلی بات تو سمجھیے کہ انسان گھر سے نکل سکتا ہے، عورت بھی نکل سکتی ہے، مرد بھی نکل سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جہاں پیدا ہوئے بس اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے. دوسری بات ہے کہ گھر میں رہنے کا حکم بھی اللہ نے دیا عورتوں کو، وقرن فی بیوتکن کی صورت میں، اور گھر سے نکلنے کا حکم بھی اسی نے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے. تو بندے مومن کا ہر کام ہی مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو جب مقصد خوبصورت ہوتا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان دعا بھی پھر اللہ سے ہی مانگتا ہے، کیونکہ اللہ سے مانگی بھی دعاؤں کے بغیر کام نہیں ہوتے. تو دوسری بات پھر اس سے یہ پتہ چلی کہ اسلام میں ہر کام کے آغاز میں دعائیں ہیں. کیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا بات ہے، ہر چیز کو آپ دعاؤں سے جوڑیں، ہر چیز کو اس سے جوڑیں، اس سے جوڑیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ. کوئی پہلی بات ہے جو کہتا ہے وہ اعوذ باللہ پڑھے، اتنا اعتراض اچھا نہیں لگتا مخلوق پہ، کہاں بندہ خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کو ڈسکس کرنے لگے. دوسری بات یہ کہ دعاؤں کا مانگنا اصل میں اپنی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے مالک، میں کر نہیں سکتی وہ کام جو تو کر سکتا ہے، تو میں تو نکل رہی ہوں گھر سے، مجھے نہیں پتا گھر سے نکلتے ہی مجھے کیا کیا جراثیم چپک جائیں، کیا کیا مسائل ہو جائیں، گھر سے نکلتے ہی حادثہ ہو، چوری ہو، کوئی میرے ساتھ برا معاملہ پیش ہو. تو اس سے پہلے کہ وہ ہو اور پھر میں وہ کام نہ کر سکوں جس کام کے لیے نکلی، تو میں تجھ سے دعائیں کرتی ہوں. پہلی دعا اس سلسلے کی بڑی ہی معروف دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہی ہوں یا نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے. ابو داؤد کی روایت ہے 5095. آپ اس ایک دعا کے الفاظ پہ غور کریں نا تو آپ کو اتنی خوبصورت حقیقتیں دکھیں گی اس میں. کیا؟ آئیے ذرا سے غور کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے بسم اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ نے حضرت سلیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں سکھایا، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کا حکم پہلی وحی میں آیا، اقرأ باسمک ربک، وہاں کیا کہا تھا، اپنے رب کے نام سے پڑھو. تو یہاں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلنا یہ پہلی وحی پر عمل کرنا بھی ہے. پھر بسم اللہ کہنا کاموں کو برکت اللہ کرتا ہے، اس کے بغیر کیے ہوئے کام ابتر ہیں، یعنی جڑ کٹے ہیں، کام وہ پھلتے پھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ گھر سے نکلتے وقت جس کام سے بھی جا رہے ہیں، اگر بسم اللہ کہہ کر یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ جس کام کے لیے جا رہی ہوں اس میں برکت دینا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں خیر آ جائے گی۔ اور پھر اگر کسی غلط ارادے سے نکل رہے ہیں تو پھر قدم رک بھی تو جائیں گے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بسم اللہ ہی چوری کرنے جاتا ہوں، بسم اللہ ہی کسی سے لڑائی کرنے جاتی ہوں، نہیں۔ پھر انسان واقعی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بے نیاز کر لیتا ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے گا کہ توکل تو اللہ، اے اللہ تیرے نام پر ہی توکل ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو امید دلائی ہوتی ہے، میں تمہارا کام کر دوں گا، کچھ مشکل ہوئی تو مجھے کال کر لینا، اچھا بیگم آپ مجھے کال کر لیجئے گا۔ ہمیں بہت سارے لوگوں کے جھوٹے سہارے ہوتے ہیں جو کبھی پورے ہو بھی جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جو آپ کو گھر سے نکلتے وقت اس چیز کا یقین دلا رہا ہے، رب کائنات، اور وہ کیا کہ تم جاؤ، تمہارے کام میں سنواروں گا۔ اور جب آپ اس رستے میں نکلتے ہیں، توکل اللہ پہ ہے، اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی ہمت، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے، یعنی اب باہر جا رہی ہوں، یا تو کوئی نیکی کروں گی یا پھر کوئی گناہ ہو سکتا ہے تو اس سے بچنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، مجھے بچانا۔ جب انسان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگتا ہے تو حدیث کے مطابق فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے، ہدیتا و کفیتا و بقیتا، و ہدیتا ہدایت دیا گیا، و کفیتا تیری کفایت کی گئی، و بقیتا وقاصے تجھے بچا لیا گیا۔ آپ کو مجھے نہیں آتی آواز، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جس کو فرشتے کی دعا لگ جائے، مجھے بتائیے کیا پھر اس کے کام ہوں گے کہ نہیں؟ کیوں کبھی کسی کے کام تو فوراً ہو جائیں اور ہمارے ہو ہی نہ؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہوتا، ہم اس کو بہترین طریقے سے نہیں لیتے۔ تو اب یہ دعا یاد کر کے آپ نے انشاءاللہ عادت بنانی ہے، اس دعا کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ خود اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھیں گے۔ کام جو کرنے نکلے بہت بڑا ہے، بہت مشکل ہے، لگ تو رہا ہونا ہی نہیں، پر آپ کہتے ہیں میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ جب آپ ہیلا کریں گے تو اللہ وسیلہ بھی بنا دے گا۔ تو اس طرح کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی، اور آپ نے اب اس سوچ کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے، اور دھیان رکھیں۔ دیکھیے ہمارا مسئلہ پتہ کیا، ہیڈ فون لگے ہوئے، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، جوتا بھی پہن رہے ہیں، اور پیچھے سے آوازیں بھی پڑ رہی ہیں، یہ ناشتہ لے جاؤ، یہ کھانا لے جاؤ، یہ بھی کرنا وہ بھی، اور اس میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ توکل تو اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے، عبادت جب عادت بن جاتی ہے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ تو پورے شعور کے ساتھ مانگیے، سیکھیے، اور پھر انشاءاللہ گھر سے جانے سے پہلے اس کو مانگیں گے۔ آئیے شروع کریں۔
بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
جی، آپ دیکھیے کہ شعور کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں یقیناً شعور کو بیدار کرتی ہیں۔ تو بچوں کو بھی یاد کروائیں گے، خود پڑھیں گے وہ خود سیکھ لیں گے، اور آپ اپنے گھر کے اندر ایسی جگہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں لکھ کر بھی لگا دیجئے، تو امید کی جاتی ہے کہ دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے بھی عادت ہو جائے گی۔ لیکن خاص طور پہ اس کے نیچے اردو کا، انگلش کا ترجمہ ضرور لکھیں، جو بھی لینگویج بچے سمجھتے ہیں، اگر ناروے میں تو نارویجین لکھیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ شعور کے ساتھ جب یہ دعائیں مانگیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ گھر سے نکلتے اتنا پیارا کام ہو گیا، کیسے برے کام کریں گے، کیسے برے ارادے ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس دعا کو اپنے لیے ایک حفاظت بنانا ہے۔ سردیوں کے موسم میں بغیر جیکٹ کے گھر سے کوئی نہیں نکلتا، تصور ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ناروے میں۔ لیکن جب آپ یہ دعا مانگ کر، دعا پڑھ کر، निकलते हैं तो जिस तरीके की प्रोटेक्शन आपको अच्छे कपड़े पहनकर सर्दी गर्मी से बचने के लिए होती है, नरम जूते पहनकर होती है, इंशाल्लाह उतनी ही उससे भी ज़्यादा आपको इसमें महसूस होगी अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन, उसका तहफ्फुज़। अब ये दुआ पढ़ लें तो बहुत अच्छी है, एक और दुआ भी ले लेते हैं, कभी ये पढ़ लें कभी वो पढ़ लें, जैसे काम पे जा रहे हैं जो दिल की कैफियत है उस वक़्त वही कह दें। तो दूसरी दुआ देखिएगा, दुआ नंबर 2 घर से निकलने की, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन अदिल्ला अव उदल्ला अव अज़िल्ला अव उज़ल्ला अव अज़लिमा अव उज़लमा अव अजहला अव युजहला अलैह। ये रिवायत अबू दाऊद की है, 5094। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं गुमराह हो जाऊँ या मुझे गुमराह कर दिया जाए, मैं फिसल जाऊँ या मुझे फिसला दिया जाए, मैं जुल्म करूँ या मुझ पर जुल्म किया जाए, मैं किसी से जहालत से पेश आऊँ या मेरे साथ जहालत से पेश आया जाए। इस दुआ की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है, आप देखिए, ज़ा दो ज़ा सारे मखरज इकट्ठे हैं, आप देखते हैं अलिफ बा ता सा जो हरूफ तहजी है उसमें कुछ लेटर्स उनकी साउंड मिलती है। हमें बचपन में तो पता भी नहीं था कि सीन और स्वात का क्या फ़र्क है, हम सा सा कहते थे लेकिन वो सा था समरा। मिलती जुलती आवाज़ों के मखारेज का फ़र्क आप इस दुआ से लीजिए। यहाँ देखिए हर मुमकिन लफ्ज़ है, दुआद जिसको हमारे यहाँ ज़ात कहते हैं अमूमन उर्दू में, तो दुआद, फिर ज़ा 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 और फिर ज़ो ज़ुल्म, तीन मिलते जुलते लफ्ज़ इसी एक दुआ में। और मैंने जब शुरू में याद किए थे मखारिज, इसी दुआ को फोकस किया था इन तीन को पढ़ने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन को इधर याद कर ले। इसी तरह आप जानते हैं कि 3 दिन बने हुए हैं ना ग्रुप्स, जैसे जीम शीन जा, ये 3 इकट्ठे हैं, इसी तरह ये दूसरे। तो बहरहाल एक बात, दूसरी बात देखिए कि घर में रहने की निस्बत बाहर इंसान इनसिक्योर होता है, इंसान खतरों में जा सकता है, भटकाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ कि मैं गुमराह हो जाऊँ। अब गुमराह होने में दो मानी लीजिएगा, आप रास्ता ही भूल जाएँ यानी लॉस योर डायरेक्शन, ये भी एक बात सच है, जाना था साउथ में चले गए, नॉर्थ में, वेस्ट में चले गए, साउथ वेस्ट में चले गए, है ना, भटकना गुमराह। दूसरी बात ये कि बाहर बहुत शयातीन खड़े हैं, हो सकता है आप घर से निकले किसी अच्छे इरादे से और बाहर जाने से पहले जो नियत थी बाहर जाते ही कोई और नियत हो गई, कोई और काम करने का इरादा आ गया, निकल रहे थे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे, कहा नहीं मैं ज़रा शॉपिंग कर लूँ, अच्छा ज़रा मैं ये कर लूँ, फिर उधर से उधर गए उधर गए, पता चला वो टाइम ही ख़त्म हो गया। तो भटकने के दो रास्ते, एक रास्ता भटकना और एक मंजिल भटक जाना। फिर आप देखिए अज़िल्ला और उज़ल्ला, फिसल जाऊँ या मुझे फिसला दिया जाए, इसके भी दो मानी है, एक ज़ाहरी फिसलना टू स्लिप के मानों में और दूसरा ये कि फिसला दिया जाऊँ। दूसरा इसमें भी वही बात है, हक से फिसल जाऊँ, सच से फिसल जाऊँ, जो नेक मकसद था मेरे पास वो निकल जाए, तो हर वक्त चांसेस तो होते ही हैं इस चीज़ के। फिर आप देखिए अज़लिमा उज़लमा, मैं जुल्म करूँ या मुझ पर जुल्म किया जाए, मसाब रिक्शे वाले पे जुल्म करें कि उससे बात तो करे 50 रुपये की और उसको 30 दे दे, या फिर ये कि वो आपका 100 का नोट लेके भाग जाए, है ना खतरे, हर जगह ये चीज़ें हमारे साथ लगी होती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए आज हला और युज हला, बाज़ारों में खुली जगहों में हर तरह के लोग होते हैं, क्या पता कोई आपसे जहालत बरते, बदतमीज़ी करे, कोई रेसिज्म का शिकार हो, कोई तासुब का शिकार हो, कोई आपको मुस्लिम समझते हुए कुछ से कुछ कह दे, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो इन सब को सामने रखते हुए आपने इन दुआओं को पढ़ना है, और मुझे इस दुआ को पढ़कर इतना अल्लाह पर प्यार आता है कि अल्लाह ताला आपको हमारी कितनी फ़िक्र है। जैसे बाज़ बच्चे नहीं अपनी माँ से कहते, मामा आप क्यों इतना फ़िक्र करती हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, तो आप कहती हैं तुम कह तो रहे हो लेकिन तुम अभी बच्चे ही हो, और वो बच्चा ना भी हो ना, माँ का दिल करता है कि मैं बच्चे को संभालूँ, मैं हर तकलीफ़ से हर शर से उसको बचा के रखूँ। जैसे कहते हैं कि किसी ने कहा कि अगर इस चीज़ की इजाज़त हो कि अल्लाह तुम्हें एक दुआ करने का मौका दे तो तुम क्या दुआ करोगी, तो खैर हद से बड़ी भी बात किसी ने की कि मैं अपने बच्चों का मुकद्दर खुद लिखूंगी। अब माँ तो कहती है ना इसको तत्ती हवा भी ना लगे और इसको तो कभी कुछ हो भी ना, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को धूप भी लगती, हवा भी लगती, बारिश भी होती, उनको ज़ुकाम भी हो जाता, सर्दी भी होती, तो अल्लाह से ज़्यादा कौन प्यार करेगा? कोई माँ ये दावा नहीं कर सकती कि मैं अपने बच्चे का नसीब अल्लाह से ज़्यादा अच्छा लिख सकूँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखे, फिर आप देखिए ये दुआ, जब मैं ख़ास तौर पे, दुनिया के एक ऐसा मुल्क है अभी भी कि वहाँ निकाब पे बैन था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ना करने पे बैन होगा मेरे गुमान के मुताबिक, लेकिन मैं जब बाहर निकलती थी उस मुल्क में तो यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह मेरे से कोई जहालत ना करे, मुझसे कोई राह जाती बातें ना पूछे, कोई मेरे से ज्यादती ना करे, और अल्लाह ताला मुझे हिकमत देना कि मैं इस वजह से अपने दीन को भी बुरा ना बनाऊँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रखे, बाजार में जाते हैं, कोई आपसे जहालत बरतता है, कोई आपका पर्स ले लेता है, कोई जान के आपसे टकराता है, या कोई और भी चीज़ें। ठीक है, तो इस शऊर से आप पढ़ेंगे, फिर देखिए कि अल्लाह तेरी पनाह किससे, गुमराह हो जाऊं या मुझे गुमराह कर दिया जाए, फिसल जाऊं या मुझे फिसला दिया जाए, मैं जुल्म करूं या मुझ पर जुल्म किया जाए, मैं किसी से जहालत से पेश आऊं या मेरे साथ जहालत से कोई पेश आए। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को रखें, और स्पेशली अपने बच्चों को भी सिखाएं कि आप स्कूल जा रहे हैं ना, तो आपके दोस्त आपको बुली ना करें, स्कूल में आपके साथ कोई गलत मामला ना हो, तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों से आप महसूस करेंगे कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मिल के पढ़ते भी हैं और मांगते भी हैं और सीखते भी हैं।
اللهم أعوذ بك أن أضل أو أدل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أدل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أدل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أدل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
अब आप देखिए कि इन लफ्ज़ों पे जितना आप गौर करेंगे उतना आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला पर प्यार भी आएगा, और जब हम हिफाजती इकदाम ले लेते हैं ना, तो फिर हमारा दिल मुतमईन होता है। जिस तरह दुनिया की चीज़ों की हिफाजत पे हमारा दिल मुतमईन होता है, इसी तरह अल्लाह ताला के साथ हमारा मामला जो भी है उसके मामले में भी हमारा दिल बहुत ही ज़्यादा मुतमईन होना चाहिए। और ये ईमान का तकाजा है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ के बारे में कुछ कह दे, तो फिर आपको उससे ज़्यादा यकीन होना चाहिए जितना हमें इंसानों की कही हुई बातों और चीज़ों पे होता है। तो ये तो दो दुआएं थी घर से निकलने की, घर से निकलिए, ज़रूरत से निकलिए, तो शरई हदूद की पाबंदियों से निकलिए, 9 बड़ी शरायत हैं ख़वातीन के लिए घर से निकलने की, उनको सामने रखिए, फिर ये दुआएँ मांगिए, इस्तखारा करना है अगर किसी काम का कि जो करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपको बाहर के फितनों से अल्लाह बचाएगा। पिछले दिनों एक खबर बड़ी मारूफ थी कि कुछ ख्वातीन के साथ बदतमीज़ी और बदतहजीबी की गई और वो रात को निकली, तो उसका भी यहाँ जवाब है। आप घर से निकलते वक्त इन चीज़ों का अहतमाम भी कीजिए, और शरई हदूद और कयूद में रहते हुए अपने लिबास, हिजाब, अपने सतर की हिफाजत करें, महरम के साथ जाए, बहुत बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं होती। औरत अपने मिजाज के अतबार से बहुत ही कमज़ोर है, तो फिर अल्लाह ताला इन दुआओं की बरकत से आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फितनों और आजमाइशों से बचाएगा। ट्रस्ट होना चाहिए हमारा अल्लाह पर, ओवर कॉन्फिडेंट होना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अब हम देखेंगे घर में दाखिल होने की दुआ। घर में दाखिल हो रहे हैं, अब फिर दुआ मांगे? जी बिल्कुल मांगिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हिसार है, दुआ मोमिन के लिए एक शील्ड है, एक तहफ्फुज़ है। तो पहली दुआ क्या है इसकी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाही वलजना व बिस्मिल्लाही खरजना वाल्लाह रब्बिना तवक्कलना। ए अल्लाह, मैं तुझसे घर में दाखिल होने और घर से निकलने की बेहतरी का सवाल करता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ हम घर में दाखिल हुए और अल्लाह ही के नाम के साथ हम निकले और अपने रब ही पर हमने तवक्कुल किया, फिर अपने घर वालों को सलाम कहे। बहुत ही प्यारी दुआ है। आप देखिए कि जब घर में वापस आ रहे हैं ना, तो पहली चीज़ जो कही गई, ये रिवायत अबू दाऊद की है 5096। तो इसमें ज़रा सा गौर कीजिएगा कि घर में दाखिल हुए, अमूमन जब इंसान घर में आता है तो थका होता है, या कोई काम करके आ गया तो उसकी खुशी होती है, और इसी तरह से किसी दूसरे चीज़ में नाकाम है, कोई गुस्सा है, ट्रैफिक जैम थी, गुस्से में होता है, बाज़ अब इंसान टायर्ड होता है, बाज़ अब उसको वॉशरूम में जाने की हाजत होती है। ये सारी बशरी ज़रूरियात है जो इंसान के साथ लगी हुई हैं। लेकिन अगर चंद लम्हे के लिए इंसान घर में आने के बाद दाखिल होते होते में ये दुआएं पढ़ लेता है, तो आप देखिएगा कि मूड भी ठीक हो जाएगा, घर वालों पे गुस्सा आ रहा था वो भी ठीक हो जाएगा, दरवाज़ा खोलने में किसी ने देर कर दी कोई बात नहीं, घर में आया देखा बच्चों ने एक हंगामा मचाया हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका खैरल मौलिज, अल्लाह मैं तुझसे घर में दाखिल होने, मौलिज का लफ्ज़ है वलूज, वो लाम जीम, तंग जगह पे दाखिल होने को कहते हैं। घर में दाखिल होने की बात की क्योंकि बाहर की निस्बत तो घर छोटा ही होता है ना, जब आप घर में आते हैं तो आपको एकदम तंगी का एहसास हो सकता है, आप एकदम अपने आप को इन चीज़ों के अंदर ले लेते हैं जिसको आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, कभी घर में कोई मेहमान आया कभी कुछ, तो आप फौरन दुआ करते हैं कि मालिक मेरे से घर में आते ही कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि जिसकी वजह से मैं बाद में शर्मसार हूँ, ठीक है। तो ये दुआ मांगते हुए आया करें, और हमारे असलाफ बल्कि सहाबा कराम भी कहा करते थे कि अल्लाह हमें घर वालों के ऐब ना दिखें, अगर हमारे पीछे घर में कोई ख़राबी कोई कमी बेशी हो गई तो हमें ना दिखाना और हमारे घर वालों को हमारे ऐब ना दिखाना। आप नोट कर रहे हैं कि गैर महसूस तरीके से इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब पाता है इन सारी चीज़ों में, और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को शऊर के साथ मांगेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये दुआएँ याद करते हैं माशाल्लाह, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अब ये माओं का काम है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से गाइड भी तो करें। तो ये जो वलूज लफ्ज़ है ना, तंग जगह में दाखिल होने का, कुरान में सूरत अल अराफ़ में आयत नंबर 40 में आप देखें, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल हयात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में से ना निकल जाए। और इसी तरह एक बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लामा मालिकल मुल्क की तूतिल मुल्क का, उसकी अगली आयत में क्या है, यूलिजुन्नहार फिल्लैल, कि अल्लाह ताला रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। इसी तरह वलीजत, वो शख्स जो किसी दूसरी कौम से हो लेकिन आपका एतमाद हासिल कर ले, अरब कहते हैं फुलानुन वलीजतुन फिल कौम, यानी वो कौम में दाखिल हो जाए और इसमें से ना हो। और इस तरह का ये लफ्ज़ बहुत मुख्तलिफ जगह वलीजा दिली दोस्ती को भी कहते हैं, अल्लाह ताला के लिए मामला आता है। तो बहरहाल यहाँ क्या पता चला कि दाखिल होने वाला शख्स है वो दुआ करता है कि अल्लाह मैं घर में दाखिल हो रहा हूँ तो इसमें खैर रखना, व खैरल मखरज, और जब निकलूँ तो बेहतरी का सवाल है। अमूमन देखिए घरों में झगड़ा हो जाता है, इख्तलाफ राय हो जाता है, आवाज़ ऊंची होती है, और अगर तबीयत में गुस्सा हो तो कुछ बर्तन भी खनकने लगते हैं, कुछ गालम गलोच पे भी आ जाते हैं, ये सब जहालत की बातें हैं। घरों में आते हुए अपने लिए दो चार जुमले रखा करें, क्या मैं घर वालों की खुशी का सामान हूँ, घर में जाते चीखने तो नहीं लगती, बच्चों पे शोर तो नहीं करती, मर्द है तो जो खुद से पूछे क्या घर जाते ही एकदम घर वालों पे रोब तो नहीं डालता, घर में प्यार से जाइए, कहते हैं किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर जाओ और वहाँ से निकलो तो गूंगे बन के निकलो, यानी उनके ऐप ना देखो और बाहर आकर उनके ऐप ना बयान करो। तो इस तरह की खूबसूरत बातें सिखा कर जो दीन लोगों को तैयार करे, तब देखिए कि मुसलमान कितना प्यारा किरदार होगा। फिर बिस्मिल्ला ही वलजना व बिस्मिल्ला ही खरजना, उसी का ऑपोजिट फिर कह दिया, पहले भी बात हो गई कि दाखिल होना अल्लाह के नाम पे, निकलना अल्लाह के नाम पे, और अब दोबारा निकलना और रब पे तवक्कुल करना, इसकी बात करके फिर सलाम कहा जाएगा घर वालों को। तो इससे क्या पता चलता है कि मोमिन घर वालों के लिए बायस खैर होता है। बड़ी खूबसूरत रिवायतें हैं घर के बारे में, तेरा घर तुझे काफ़ी हो, और मोमिन की शान बताएगी कि उसका दिल घर में लगता है। औरत की नहीं बात हो रही, मर्द की। आपने अपने साबिक को उनके पूछने पे तीन बातें जो बताई थी उसमें एक बताई थी वल जसा का बैतुक, तुझे तेरा घर काफी हो। तो आइए जरा इस दुआ को भी मांगते हैं शौर के साथ, याद करेंगे।
اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا
जी आप देखिए कि शौर के साथ मांगेंगे तो इंशाल्लाह बेमकसद घर से निकलना भी काफ़ी ख़त्म हो जाएगा, और घर में आने के बाद आप खुशी भी महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे बाहर के हंगामों से निकाल कर घर में बुला लिया। अगली दुआ देखेंगे, बाज़ार में दाखिल होने की दुआ, बाज़ार और वो भी दुआ। जी देखिए, ईमान वाला अपने कामों के लिए बाहर निकलता है, और बाहर निकलने की जगहों में एक बाज़ार है जिसको हदीस के मुताबिक बदतरीन जगह कहा गया। अल्लाह की निगाहों में बेहतरीन जगह मस्जिद और बदतरीन जगह बाज़ार है। क्यों कहा गया? क्योंकि बाज़ार में शर होता है, शयातीन फिरते हैं, माल का लेन देन होता है, एक दूसरे पे जुल्म ज्यादती हो सकती है, फिर इसी तरह फहाशी और उरियानी का डर हो सकता है, बाज़ार में लड़ाई झगड़े की नौबत हो सकती है, और अगर ख़वातीन भी आ जाएं बाज़ार में तो निरा फितना ही फितना है। तो जब आप ऐसी शर फितने वाली जगह में जाएं तो सोच लीजिए कि आपको कितने जरासीम और वायरसेस और बैक्टीरिया चिमटने वाले हैं। तो ईमान वाला उससे पहले दुआ मांगते हैं। आप ज़रा इस दुआ की खूबी देखिएगा कि अल्लाह ही की बड़ाई है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूरी दुआ में ये नहीं लिखा अल्लाह पैसे पूरे हो जाएं, अल्लाह नकली चीज़ ना ले लूँ, अल्लाह ज़्यादा बार्गेन ना करनी पड़े। हमारे यहाँ तो दुआएं ऐसी होती हैं ना, लेकिन आइए ज़रा देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु यहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाहत और इसी की बादशाहत है, और सब तारीफ उसी के लिए है। वही जिंदगी देता और वही मरता है, और वो जिंदा है मरता नहीं, इसी के हाथ में सब भलाई है, और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। ये रिवायत तिर्मिज़ी में 3428 और अल मुस्तदरिक अल हाकिम 538 जिल्द 1 हदीस नंबर 1974 है। अब आप देखिए कि इस दुआ में अल्लाह की बड़ाइयाँ, नंबर एक उसकी वाहदानियत, दूसरी बात उसका कोई शरीक ना हो, फिर उसी की बादशाही उसी की तारीफ, फिर ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में, फिर दोबारा कह दिया हय्युल्ला यमूत जिंदा है मरता नहीं, बियदिल खैर। ज़रा सा अपना इंटेलेक्ट यूज़ कीजिए, आखिर क्यों? और बाज़ अरब मुल्कों में आप जाए ना तो मार्केट्स के बाहर ये दुआ लिखी हुई होती है, इवन बड़े बड़े मॉल्स हैं उनके बाहर खूबसूरत सी कैलीग्राफिक में ये दुआएं होती हैं। और आप इवन जहाज़ से निकल रहे हैं, जहाज़ में जा रहे हैं, तो आप इस सोच से भी पढ़ लिया करें कि रास्ते में ड्यूटी फ्री शॉप आती है, जो कि असल में फ्री शॉप नहीं होती, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। देखिए, बाज़ार में दिल लगता है, फितरी तौर पे बच्चे को भी अच्छा लगता है, औरत को भी अच्छा लगता है, मर्द को भी, नई नई चीज़ें। बाज़ लोग कहते हैं विंडो वॉचिंग के लिए जाना है, क्या मेरी आपकी ये ज़िंदगी इतनी है कि हम विंडो वॉचिंग में वक्त ज़ाया कर दें? आप इस वक्त ये पढ़ने के बजाय जाकर किसी बाज़ार में उसकी विंडो से झांकते फिरें, इतनी फालतू हैं आप, इतना सस्ता वक्त है आपका, राइट? तो यहाँ अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत की बात दो दफ़ा की है, अपने ज़िंदा करने और मरने को, और अपने ज़िंदा होने को। क्या पता चला दुनिया के इस बाज़ार से गुजर जाओ, इस शेर की सूरत में, वो एक बड़ा मुझे पसंद है शेर, आता नहीं है सही, कि गुजरा हूँ बाज़ार से मगर खरीदार नहीं। कुन फ़ि दुनिया का नक गरीब आबिर सबील। आपने फरमाया इस दुनिया से ऐसे गुज़रो जैसे तुम एक मुसाफिर हो। ट्रांसिट लाउंज है ये दुनिया। और वाकई एयरपोर्ट्स पे जब लंबे लंबे इंतज़ार करने पड़े और लोग इधर से उधर उधर से इधर घूमते फिरते देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चीज़ बिक रही क्या नहीं, चलो ऐसे ही देखें, और फालतू वक्त में वो भी फिर आपको खूब अच्छी तरह से माशाल्लाह अपनी बातों के शहर में निकालते हैं। बाज़ारों से गुजरना पड़े तो गुजर जाइए, लेकिन ख़रीदार ना बने, क्योंकि अगर हर चीज़ आप ख़रीदने बैठ गए ना तो आपका घर भी अस्तबल बन जाएगा। और पूरा जिसको चौथा कलमा कहते हैं ना, थोड़े से लफ्ज़ों का फ़र्क है तो अल्लाह की बड़ाई, फिर शैतान है ना वहाँ, इसलिए भी वहाँ अल्लाह का नाम है। जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते बोलते सुनते वक्त हम जानते हैं ना कि ऐसी जगहों से आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए तो शैतान भागता है। तो आपने अभी शऊर से पढ़ना है। अगर कभी आपको किसी ज़रूरत के तहत बाज़ार जाना पड़ता है, ग्रोसरी स्टोर जाते हैं आप, ये तो आप पढ़ के जाइए। मुझे समझ नहीं आता कि इस दुआ को पढ़े बगैर कोई जा कैसे सकता है। इतने तो ख़तरे हैं, झूठ धोखा, पैसे ले ले कुछ ज़्यादा कम ले ले, ये दुआ पढ़ी है ना, अल्लाह ताला की हिफाजत में आप जाएंगे। आइए सीखिए इसको भी। आप इसके तर्जमे पे गौर यकीनन करेंगे और मुझे यकीन है कि जितना आप गौर करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिल भी इसमें खुलेगा और आपको इसमें और भी फ़ायदे की चीज़ें दिखेंगी। अभी तक जो हमने सीखा तो घर से निकलने, फिर घर में दाखिल होने और बाज़ार में दाखिल होने की दुआएं मांग रहे हैं। क्या पता चला? पहली बात है बाहर जाने पर अल्लाह की हिफाजत में आने की ज़रूरत है। चेकलिस्ट बना ले बाहर जाते वक्त, चंद सेकंड खामोश रहकर ख़ुद को अल्लाह के हवाले करती हूँ। हमारे कल्चर में तो लोग कहते भी हैं कि अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हवाले, रब रखा। हाँ तो क्या वाकई हम अल्लाह हाफिज़ होते हैं, खुदा हाफिज़ होते हैं? फिर आप देखिए गुमराही से बचने की दुआ जब करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आप गुमराहियाँ ख़रीद के लाएँ? वलाइकल्लज़ीन अश्तरउद्दलालता बिलहुदा। तो आप शऊर के साथ शॉपिंग भी करेंगे और लोगों के साथ मामला भी करेंगे। फिर इस तरह अल्लाह पर तवक्कुल का इज़हार है आपके घर से निकलने पे और घर की हिफाजत के लिए भी कि मैं जा रही हूँ, अल्लाह पीछे वालों का भी तू निगेबान, मेरा भी तू निगेबान। फिर दाखिल होने से पहले बरकत की दुआ मांग रहे हैं। बरकतों की तो बहुत ज़रूरत है, थोड़े पे भी ज़्यादा हो जाए ये बरकत होती है। फिर घर वालों को जब सलाम करते हैं तो मोहब्बत का बायस होती है ना। तो आप देखिए कि हमारे दीन ने जो हमें मैनर्स और एथिक्स सिखाए हैं ना, ये मोहब्बतों को बढ़ाने वाले हैं, इसमें बेहतरीन तरीके से बंदा जाता है। फिर आप देखिए कि जो भी हम बाज़ार में दाखिल होने की दुआएं मांग रहे हैं, तो अगर हमें इस दुआ के अल्फाज के ऊपर यकीन होगा ना, हम सिर्फ वो चीज़ ख़रीदेंगे जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, फालतू चीज़ें नहीं लेंगे। और अल्लाह करे कि हमारी शॉपिंग बहुत ही खूबसूरत हो जाए, कि हम एक फालतू चीज़ अपने घर में ना लाएं, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास ना हो कि जिसकी वजह से हम अपने आप को दूसरों के हवाले कर दें।